मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا। سورة معارج کی یہ آیات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لغا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولى، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہونا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک، آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے، آپ کے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا، وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے۔ وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے. ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کرے یار, پرانی دوستی ہے, کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے, ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے, احسانات ہیں. احسان کیسا ہے بھائی, ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی, اس نے پلا دیا تھا, یہ اس نے احسان کیا تھا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو, یا مجھے 50 روپے دے دو, ضرورت ہے. اور یاد بھی دلا دیا اس نے, یار یاد ہے تم ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے. کوئی ریلیشن نہیں آپ کا اس سے, نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ نہ آپ کیا کہتے ہو, بھائی احسان کیا تھا یار, میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں, اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن, لیکن بندہ کیا ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے, پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا, کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں آپ. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو, ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو. حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات, لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس, پاورفل آدمی ہے, چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا, اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے, ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں, کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلایا, آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے, خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا, جہاں پاورفل پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے, ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے, احسانات سے چینج ہو رہا ہے, اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں, تین قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ. نمبر ایک, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت, نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں, کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے, آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا, اب میں نے تجھے بلایا ہے, تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا, جو کچھ ہے جیب میں نکال دے, اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دیے ہیں. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں, میں تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں, کیا کمالات ہیں, ایسی پاور ایسی طاقت. فالق الحب, اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے, گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے, کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے, صاحب کمال نہیں ہوتا وہ. ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا, طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20 50 किलो का बट्टा उठा लिया, कमाल क्या है, एक छोटी सी सुई में सुराख करके दिखा दिया आपने, है भाई। बॉडी बिल्डर ये काम कर सकता है? बल्कि छोटी सी सुई बना भी नहीं सकता। जितनी मशीनें बन चुकी हैं इस वक्त, जितनी चीजें इजादात हो रही हैं, सब साइंसदानों के कमालात है ना, मगर ये तमाम कमालात को आप एक तरफ रखें और अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं, अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह फअरूनी मादा खलकल्लज़ीन मिन दूनी। अल्लाह एक एक चीजों को बयान करता है कुरान में और फिर कहता है ये मेरी प्रोडक्ट है, बताओ मेरे अलावा ने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बना के दिखाई हो, कोई एक दिखाई हो। आप क्या समझते हैं हवाई जहाज कितनी पेचीदा मशीन है? नेट पे सर्च करें, मैं तो देखता हूं ऐसी वीडियोस, बड़ा मजा आता है। जब जहाज ईजाद हो रहे थे ये तजर्बे, फिर जहाज की मशीनरी बड़ी पेचीदा होती है, तभी उसके जो इंजीनियर होते हैं उनकी तनख्वाहें ठीक ठाक होती हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता कि पलक में कचरा आ गया, गाड़ियों में तो होता है ना, पलक में कचरा आ गया धक्का लगाओ चलो भाई वहां तक। जहाज में ये एक बहुत पेचीदा सेंसिटिव आलात लगे होते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता कि जी वहां थोड़ा सा झटका आया ना तो बस सबकी आंतें और गुर्दे फेफड़े निकले हुए होंगे। बहुत ही ऑटोमेटिक, एक बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का सिस्टम होता है जहाज में। बड़ा कमाल है जिन साइंसदानों ने, जिन इंजीनियर्स ने ये चीजें बनाई हैं। अल्लाह मिसाल देता है मक्खी और मच्छर की। आपने इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए जिन्हें उड़ाने के लिए इतना ईंधन चाहिए। जो चलते हैं तो ब्रेक नहीं है उनकी, जिस स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले जा, चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले जा, थोड़ा नीचे कर, खाला का घर आ रहा है वहीं उतार दे मुझे। अल्लाह ताला ने जो जहाज बनाए जिनको परिंदे कहा जाता है, ये जहाज किसी पायलट के मोहताज नहीं है। इनका पायलट कहां होता है? जहाज के अंदर एक छोटा सा दिमाग है जो उस जहाज को उड़ाएगा। हेडलाइट लगी हुई आंखों की शक्ल में। अवलम यरू इल तयरी फौकहुम साफातिन व यक्बिज़न। अल्लाह कहते हैं इन परिंदों की तरफ नहीं देखते जो अपने परों को फैलाते हैं और हवा में ही सुकेड़ भी लेते हैं। कैसे स्पीड को मैनेज करते हैं? जहाजों की स्पीड को मैनेज करना आसान नहीं है। बहुत ही खुदकार किस्म के आलात, पेचीदा किस्म के आलात लगे हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को जो इनकी स्पीड है ना वो खुद उसको मैनेज करते हैं अपने ही दिमाग से। जब परिंदे का ख्याल होता है स्पीड आहिस्ता करो, परों में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है वो पता नहीं क्या घुमाते हैं परों को, स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाती है आहिस्ता। वही पायलट फैसला करता है इधर को घूमना है, फौरन इधर को घूम जाते हैं। वही पायलट फैसला करता है, खुद जहाज ही फैसला कर रहा है कि मैंने किधर जाना है, जहाज को कितना ईंधन चाहिए, वो जहाज ही बता रहा होता है कि तेरा तुझे भूख लग रही है, अब तू इतने दाने जो भी उसको खाना है ना, जैसे समंदर के ऊपर जो परिंदे होते हैं अक्सर मछलियां खाते हैं, तो पायलट खुद बता रहा होता है। हमारे यहां पायलट को अलग से इंजीनियर आके बता रहे होते हैं कि इतना फ्यूल चाहिए हमें कराची से लाहौर जाने के लिए। जब ये परिंदे लंबे लंबे सफर करते हैं तो किस परिंदे को कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल भी कितना देसी और सादा रखा हुआ है, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए उनको, वरना तो कितनी टेंशन में आ जाते वो परिंदे। पेट्रोल महंगा होने से परिंदे ही बेचारे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ईंधन वहां से मिलेगा जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन है। समंदर की मछलियां खा लो ये तुम्हें एनर्जी देंगी, दाना खा लो, बाजरा खा लो, और क्या क्या काम अल्लाह इन परिंदों से ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगलात वजूद में कैसे आ गए, इनमें बीज किसने डाला है जाके। अमेजॉन के जंगलात देख लो, थाईलैंड के जंगलात देख लो, मरी और नथिया गली के जंगलात देख लो, पूरी दुनिया में है ना जंगलात, तो ये बीज कहां से आया यहां पे? हैरानगी की बात है या नहीं है? माहिरीन ने इस पर तहकीक की, उन्होंने कहा ये बहुत सारे बीज परिंदों ने पूरी दुनिया में फैलाए हैं। परिंदे जब खाते हैं ना दाना वाना खा रहे हैं कोई भी, तो इनके बीज हजम नहीं होते, और ये इनकी बीट में, बाद दफा ही बीज हजम नहीं होता, बीट में निकल के जमीन पे गिरता है, उसी से पौधा निकल आता। तो अल्लाह ने इनके जिम्मे जब जमीन को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرحہ کے لشکر کو تباہ کرنے کا, تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں, کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ کیسے؟ پرندوں کے ذریعے. پرندوں کو خود بھی پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے, بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں, کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے, شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری, وہ اللہ نے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں ڈال دیے پہلے سے. وہ بائر ایسے راستوں پہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے اور وہ بائر بھی سفر کرتی ہے اور اپنا راستہ نہیں بھولتی. کیا صاحب کیا کمال کرتی. اس کی کھوپڑی اتنی سی ہے, اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے. اتنی سی شہد کی مکھی کی کھوپڑی تو دیکھو, اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. کوئی اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 جی بی کا یہ سافٹ ویئر یہ ڈال دو, آپ بولے گا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا, اس میں تار لگے گی کیسے بھائی. تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کمالات ہیں یار, کیا سافٹ ویئر ڈال دیے. اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر, جہاں سے بھی مکھی اٹھا کے لاؤ گے وہ ایک ہی کام کرنا شروع کر دے گی. آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. ان کا کام ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو, انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے, ہمارے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا اور وہ ایک دن کے اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو بنا دو, موقع اچھا ہے ابھی, آپ مجھے بنا دو, چار شادیاں سب کی پکی انشاءاللہ, بہترین موقع. اب یہ چانس اگر مس کر دیا نا تو ہر دفعہ ایسے چانس نہیں آتے, یہ بتا رہا ہوں میں. اور ڈنڈے مار مار کے, یہ بھی میں نے کہا تھا بیان میں. تو اتنی سی کھوپڑی. خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کے پہاڑوں میں اتنی عجیب عجیب قسم کے پہاڑ ہیں نا, وغرابیب اسود, سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے, سفید پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو کھودتے چلے جاؤ, خزانے نکلتے چلے جائیں گے. وہ نمک کی کان دیکھی ہے, نمک کے بڑے بڑے پہاڑ, بھائی یہ کیسے بنا؟ اللہ کو پتا تھا دنیا آباد ہوگی, ان کو نمک کی ضرورت ہوگی. تو اتنے کھیوڑا کی جو کان ہے اتنی بڑی, میں تو گیا ہوں نا اس میں, اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں پھر نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی. اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے کھود کھود کے نکال رہا ہے. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر. کوئلے کی کانیں ہیں, مٹی, کوئلہ کیسے بنا دیا اس نے؟ ٹھیک ہے سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہیں لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں نا, ایکچولی ہوا یہ تھا بھائی, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اللہ نے جب انسان کو رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو مینجمنٹ کر رہا تھا کہ ان کو کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ڈیزل پیٹرول کی بھی ضرورت پڑے گی, آبادی بڑھے گی. اور ایک دور آئے گا مفتی طارق مسعود صاحب چار شادیوں میں بیان کر کے آبادی اور بڑھا دیں گے قرآن میں دیکھ کے. تو اللہ میاں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب اس بندے کے بیان ہوں گے اور اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی تو ان کو کھلانے کے لیے بھی تو کچھ ہو, تو جنگل کی لکڑیاں تو ختم پڑ جائیں گی. تو اللہ میاں نے ڈیزل اور پیٹرول کے ذخائر پیدا کر دیے, اللہ نے کوئلے کے ذخائر پیدا کر دیے, तो पहले से पैदा है, अब उसकी लॉजिक तो होगी कोई, पता नहीं करोड़ों साल में वो पत्थर जल के ऐसा हो गया या कोई लावा पिघला होगा, वो हमें ठीक है हर चीज की, अल्लाह जब कोई काम करता है तो उसके पहले असबाब तैयार करता है ना, तो असबाब के तहत अल्लाह ने कायनात को चलाया, लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये खुद बहुत हो रहा है। जब आपको एक चीज का सबब नजर आ रहा है और टाइम पे एक काम हो रहा है तो ये हो नहीं रहा, किया जा रहा होता है। हर हर काम जब टाइम पे होता है ना, इसका मतलब ये किया जा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है मां की छातियों में दूध आता है, इसकी एक लॉजिक है। माहिरीन कहते हैं लॉजिक है कि हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और फिर वो दूध वाले हार्मोन्स होते हैं, फिर भाई अभी क्यों पैदा हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पैदा हो गए है भाई, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब वो होते हैं हार्मोन्स, ये खुद बखुद नहीं हुए, ये किसी ने सिस्टम मां के पेट में और मां की बॉडी में ये सॉफ्टवेयर पहले से किसी ने इंस्टॉल किए हुए हैं। देखो आप कंप्यूटर में जब काम करते हो, F का बटन दबाते हो तो क्या लिख के आता है सामने, F लिख के आता है कि नहीं आता? अब इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है? यह F इतना समझदार है कि दबाया तो सामने वर्ड के पे जो है ना F लिख के आ गया, खुद बहुत थोड़ी हो रहा है, यकीनन इसकी एक लॉजिक है। लेकिन ये क्या बात है कि F दबाने से F ही आ रहा है जो आप चाहते हो, तो ये लॉजिक तो है इसकी। इस लॉजिक की बेस पे उस इंजीनियर का इंकार नहीं किया जा सकता जिसने कीपैड बनाया और वो सॉफ्टवेयर बनाए कि सिस्टम के साथ ये कीपैड अटैच होता है और इस कीपैड की खोपड़ी में ये बात आती है कि जो मुझे F का बटन दबा रहा है, जो A का बटन दबा रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि ये दबाऊं तो ये आए, तो ये आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक तो है, लेकिन ये कहना इलॉजिकल है कि इस लॉजिक को बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये खुद बखुद हुआ है। खुदा की कसम, आप कीपैड पे ए बी सी डी लिखते हो और सामने ए बी सी डी लिखा हुआ आता है, ये इतना बड़ा कमाल नहीं है? इतना बड़ा कमाल ये है कि बच्चा पैदा होता है और मां की छातियों में फिजिकली दूध आ जाता है, वहां F लिखा हुआ आ रहा है, हकीकत में F निकल के नहीं आ जाता सामने। नहीं आई मेरा ख्याल बात? आपने ये तो नहीं कि F का बटन दबाया या चलो लड्डू का बटन दबाया, लड्डू निकल के आ गया कंप्यूटर से, ऐसा हुआ कभी? क्या ख्याल है भाई? ये लड्डू बोला और सामने क्या आ गया? ये होगा गूगल पे आप लड्डू बोलोगे, लड्डू लिखा हुआ आ जाएगा, बना हुआ भी आ जाएगा, खाने वाला लड्डू सच्ची मुच्ची का नहीं आएगा। इतनी तरक्की साइंस ने नहीं की है, और अगर साइंस कर भी लेना इतनी तरक्की, तो पता है क्या होगा कि आपको जब लड्डू चाहिए होगा, आप गूगल पे बोलोगे लड्डू, तो फौरन वो कंपनी जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा वो आपके घर लड्डू पहुंचा देगी जो बना हुआ होगा पहले से। बहुत ज्यादा तरक्की होगी तो ये हो जाएगा ना, लड्डू बोला ठक करके वो। कल किसी ने चंद दिन पहले जो है ना, ये जो आजकल पाकिस्तानी कौम बहुत फारिग है यार, और मीम्स बनाने में तो बड़ी मास्टर है। वो किसी ने भेजा कि वो एक आदमी गूगल से कह रहा है ये वाला गाना सुना, पूरा गाना गा लिया ना, ये वाला सुना, बोला दो चार जुमले छोड़ दिए होंगे, गूगल ने कहा उल्लू के पट्टे पूरा गा ही लिया, दो जुमले रह गए वो भी गा ले खुद ही। गूगल ने जवाब दिया उल्लू के पट्टे पूरा गाना तो तूने गा ही लिया है, दो जुमले भी खुद ही गा ले ना। तो एक टेक्नोलॉजी अब इतनी भी तरक्की करेगी देखना आप, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत आगे जाने वाली है। तो ये भी बता देगी कि कमबख्त दो लाइनें रह गई, ये गालियां भी देगी आपको कि उल्टे काम मत कर। तो हम सिस्टम पे F का बटन दबाते हैं, सामने F लिखा हुआ आता है, ये नहीं कि कोई F निकल के सामने आ जाए। हम लड्डू LADDO लिखेंगे तो लड्डू लिखा हुआ या ज्यादा ज्यादा गूगल पे तस्वीर लड्डू ही आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा एग्जैक्ट उसी टाइम पे लड्डू तैयार होके कंप्यूटर से बाहर निकल के गिरना शुरू हो जाए। और अगर हो भी जाए, बिल फर्स्ट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए, तो भी भाई ये खुद बहुत नहीं है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है और दूध लिख के नहीं आ रहा मेरे भाई, समझ रहे हो, लिखा हुआ मिल्क नहीं आ रहा। ऐसे सॉफ्टवेयर मां के बॉडी में अल्लाह ने डाल दिए हैं, इधर बच्चा आया सच्ची मुच्ची का दूध निकल के आ गया मां की छातियों में, आया भी वहां जहां से आना चाहिए, और बच्चा दुनिया में आया ला तालमून शैआ, अल्लाह कहते हैं कुछ भी इल्म नहीं होता, लेकिन एक बात का इल्म होता है, ये चीज उसके दिमाग में है कि मुझे दूध कहां से, पैदा होते ही मां की छातियों की तरफ दूध पीता बच्चा लपक रहा होता है, पैदा होते ही। क्या किसने बता दिया, वो तो मां के पेट में था, उसे कौन सिखा रहा था भाई, पेट के अंदर कौन सिखा रहा था? पैदा होते ही तेरा सबसे पहले काम क्या है? तलाश करना तुझे फीट कहां से मिलेगी। जानवरों के बच्चों को देख लो आप, बकरी का बच्चा पैदा होता है एकदम बकरी के थनों की तरफ ना ऐसे छलांगे मारने लगता है पैदा होते ही। ये ऐसा कमाल है मेरे भाई, इससे बड़ा कमाल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तभी अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह, ये मेरी तखलीक। फिर बच्चे को जो अल्लाह ने बनाया है हर चीज, कुरान की एक आयत अहसना कुल्ल शैइन खल्कहु, हर चीज को बेहतरीन बनाया है, हर चीज को। बच्चा कमजोर होता है वो मोहब्बतों का मोहताज होता है। बच्चा आपकी कोई खिदमत नहीं करता, अपनी खिदमत ठीक ठाक 10-15 साल तक दबा के लेता है वो खिदमत। अल्लाह को पता था ये जाया हो जाएगा, इससे लोग मोहब्बत नहीं करेंगे क्योंकि बोझ हो जाएगा ना, 10-15 साल कौन खिदमत करे भाई उसकी। लेकिन इसके जरूरत है, दुनिया में आया है ना इसके लिए इंतजाम करो। इंतजाम अल्लाह ने क्या किया, बच्चों के चेहरों पे एक खास किस्म की लकीरें डाल दी हैं। ये साइंसदान कहते हैं ये बात, ये मैं नहीं कह रहा, जिसको चाइल्ड स्कीमा कहते हैं। बच्चों के चेहरे पे ना एक अलग किस्म की लाइनें होती हैं जो बड़े होकर खत्म हो जाती हैं, कमाल की बात ही। वो लाइनें क्या कर रही होती हैं, वो बच्चों को मासूम शो कर रही होती हैं। आपने देखा बच्चे जब देखते हैं ना बड़ी, हम कहते हैं ना यार बड़े मासूम निगाहें हैं इसकी, कभी बच्चे पे आपको गुस्सा नहीं आता जल्दी, उसके गुस्से पे भी बल्कि उल्टा हंसी आ रही होती है, सिवाय गधों को। गधे वो होते हैं जिनको बच्चे की शरारतों पे गुस्सा आना शुरू हो जाए, इसकी अलामत होती है कि ये कौन है, और फिर वो बच्चों को कूट रहे होते हैं। बच्चा तो छोटा बच्चा तो भाई वो गुस्सा भी कर रहा है तो हंसने की बात है यार, ठीक है ना, उसको थोड़ी पता है सही क्या है। हमें तो बच्चों की उल्टी बातों पे भी हंसी आ रही होती है, गुस्से वाले कामों पे भी हंसी आ रही होती है। फिर खवातीन कहती हैं खुद पालो ना कुछ दिन, संस करती हैं फिर नीचे कमेंट्स में, खुद पालो ना कुछ दिन तो पता चलेगा। खैर वैसे औरत की बड़ी हिम्मत होती है बच्चा पालना, ये हकीकत है, आदमी का काम नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह मियां ने क्या किया है, उसकी चेहरे पे कुछ लकीरें लाइनें ना पेंटिंग कर दी हैं। वो बड़े होकर वो लाइनें क्या होती हैं, खत्म, वो लाइनें चेंज हो जाती हैं। उसकी आंखों में अलग सी एक मासूमियत से डाल दी है, वो देखता है बड़ी मासूमियत से, रोता बहुत जल्दी रोता भी है। और जब बच्चा रोना शुरू करता है ना उसके चेहरे पे एक अजीब इतना एक आजजी आ रही होती है कि इंसान का दिल पिघलता चला जाता है। ये कुदरत ने इंतजाम किया, ये बच्चा ऑटोमेटिकली बना होता तो ये पेंटिंग इसके चेहरे पे ना होती। और ये हर मखलूक के बच्चे पर है, जानवरों के बच्चों पे भी होती है ताकि उसकी मां उस पर तरस खाए, शेर के बच्चों में भी होती है, बड़े होकर खत्म हो जाती है। बड़े होकर अब उसको मासूमियत की जरूरत नहीं है, अब उसको दहशत और रोब की जरूरत है। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है उस पर रोब आता है। आप शेर को देख लो और शेर के बच्चे, शेर का बच्चा बड़ा क्यूट सा लगेगा, शेर नहीं लगेगा क्यूट सा। शेर को आपने चुम्मी लेने की कोशिश की ना, वहीं से एक आवाज मारेगा अपनी तमीज से रहो तुम, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है ना मोहब्बतों की। वो तो अब तो वो पावरफुल हो गया, जब छोटा था तो उसको जरूरत थी मोहब्बत की। तो बकरी के बच्चे में भी ये मासूमियत है जिसकी वजह से बकरी अपने बच्चे से प्यार करती है। आप बकरी के बच्चे को, मैंने तो बहुत पाले है, जब बकरी के बच्चे का रात को पेट भरें, सुबह उसको दूध पिलाएं, दोबारा दूध पिए, रात को आराम भी किया वो, फिर सुबह उसकी छलांगे देखो, ऐसे कलाबाजियां खा रहा होता है और बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर। मैंने एक टैडी बकरी पाली हुई थी, उसके 3 बच्चे थे पिद्दे पिद्दे से, तो बकरी टैडी, फिर वही लतीफा याद आता है, वो एक आदमी की टिकनी टिकनी खातून से शादी हो गई तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे, वो बेचारा तपा रहता था यार कितने साल हो गए बच्चे उतने के उतने, वो मां पे चले गए। तो एक दिन बच्चों की मां उनको खाना खिला रही है, बेटा खाना खाओ, खर्चा तो इसका हो रहा है ना खाने पे, खाना खाओ बड़े हो जाओगे। तो ये जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कह रहे इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये कमबख्त उतने के, कह रही और छोटे होंगे। तो टैडी बकरी जो है ना मैंने पाली हुई थी, 3 बच्चे थे उसके। अब वो क्या, मैं चराने के लिए भी लेके जाता था इधर ही घुमाने के लिए ना असर के बाद। अब तो सिक्योरिटी हालात ऐसे हो गए कि आदमी इजी घूम ही नहीं सकता, इजीली घूम ही नहीं सकता। तो उसको हम लेके गए, तो वो क्या करती थी, बकरी चरती रहती, बच्चे भी दाएं बाएं हो जाते। मगरिब से थोड़ी देर पहले ना बकरी को पता था वापसी का टाइम हो गया है, तो बच्चे कहीं दूर जा चुके होते थे, बकरी इधर, तो बकरी एक खास आवाज निकालती थी। ये आवाज होती थी बच्चों से कि वापसी का टाइम शुरू हो। वो जो तीन बच्चे फुदकते हुए भागते थे ना, ओहो, वो देखने का मंजर था। कोई उधर से भागता हुआ आ रहा, और गिर रहे होते थे कलाबाजियां की, इतनी स्पीड से भाग रहे थे कि गिर रहे होते थे। वो बड़ा अच्छा लगता था मंजर। वो एक तो वैसे ही ठिकने ठिकने से बड़े होना ही नहीं था उन्होंने तो वो इतनी स्पीड से भागते, वो इतना अच्छा मंजर लगता था, नेचर का हुसन नजर आता था। मैं कहता था, देखो ये खुद ब खुद नहीं है, इनके बच्चों को पता है कि जो अम्मा ने ये स्टाइल में आवाज निकाली है ना, ये वाला स्टाइल, ये सुबह ये स्टाइल अम्मा का नहीं होता, ये स्टाइल है ही इसके लिए कि बेटा वापसी का टाइम शुरू हो गया है। तो ये तकड़ 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 भाग रहे हैं, कोई टकरा रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये स्टाइल इनका खत्म। हर चीज को हमारे रब ने बेहतरीन अंदाज से बनाया है। इंसान अपनी बॉडी को देख लो, वफी अनफुसिकुम, अल्लाह कहते हैं अपनी जात में निशानियां देख लो। हमारे सर पे बाल रखे हैं अल्लाह ने, खूबसूरती है या नहीं है इन बालों में? मर्द को दाढ़ी की जीनत दी अल्लाह ने, इसलिए कि इसमें क्या है मर्द के लिए, खूबसूरती। तभी पैगंबरों का हुक्म है दाढ़ी बढ़ाओ, तो हम फितरत से बगावत करते हैं। मर्द को अल्लाह ने एक मर्दाना आवाज दी है, औरत में अल्लाह ने निस्वानियत पैदा की है। औरत में मर्दानगी होती तो मर्द औरत की तरफ माइल नहीं होता, मर्दों में निस्वानियत होती, औरत पना होता तो औरत मर्द की तरफ माइल नहीं होती। तभी कहते हैं खलका, वो क्या है, फजअला मिनहु ज़ौजैन, अल्लाह कहते हैं एक पानी से बनाया, किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत बना। मर्द को औरत की तरफ रगबत उसके औरत पने की वजह से हो रही है, औरत को मर्द की तरफ अट्रैक्शन उसकी मर्दानगी की बेस पे हो रही है। तो मर्द को मर्द बना के हर लिहाज से आदमी बना दिया, और औरत को औरत से बना के सर के बाल से पांव के नाखून तक उसमें निस्वानियत डाल। उसकी आवाज देखो, उसके चलने का अंदाज देखो, हर हर चीज से निस्वानियत टपकती है कि नहीं टपकती है? उसको चेहरे पे बाल नहीं दिए, और मर्द के सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर हर चीज से मर्दानगी टपकती, आवाज, बहादुरी, शजात। ये जो औरतें कहती है ना हमारे मियां की खोपड़ी घूमती है, ये भी अल्लाह मियां ने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं ताकि तुम थोड़ा सा डरती रहो। इससे घर चलाना है ना, तो घर चलाने के लिए घर का सरबरा अल्लाह ने आदमी को बनाया, तो अगर उसमें खोपड़ी हर वक्त सेटिंग पे ही रहती तो पूरे घर की खोपड़ियां सेटिंग से आउट हो चुकी होती। इसलिए अल्लाह ने कहा थोड़ा सा सेटिंग खराब रखो इसकी, पागल की, लेकिन थोड़ी खराब ठीक होती है, बहुत ज्यादा ठीक, क्योंकि गधे ज्यादा आजकल मार्केट में मिलेंगे। हर वक्त ही चंगेज खान की तरह उछलते कूदते रहना, अखलाक खराब कर देना, ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोब, आजकल जो है ना हमारे यहाँ एतदाल तो है नहीं ना, एतदाल थोड़ी है हमारी सोसाइटी में। जो मर्द बद अखलाक होता है वो चंगेज खान की औलाद बन जाता है, हलाकू खान की औलाद बन जाता है, और जो फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं वो मर्द और औरत का फर्क खत्म। कल कोई फैमिली आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो एक आदमी कह रहा है मेरी बेगम जो है ना मुझसे बगैर बताए चली जाती है, जहां भी जाती है मैं मना कर रहा हूं। तो खातून कहती है कि ये भी तो मुझे बगैर बताए चले जाते हैं जहां मर्दी जाते हैं, वो ये कह रही है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखे अब फेमिनिज्म जो है ना, जो आजकल के कुछ लिबरल किस्म के स्कॉलर जो खवातीन के हुकूक की बात तो कर रहे हैं मगर असल में खवातीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए सिस्टर, आपको अल्लाह मियां ने पाबंद किया है कि आप शोहर को बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती हैं। कह रही फिर ये भी तो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा ये रुखसती इसकी नहीं हुई है, आपकी हुई है, ठीक है ना? ये तो वैसे ही बाहर है, बाहर से पकड़ के शादी वाले दिन इसको घर में लेकर आए हैं, ये तो वैसे ही बाउंड आप हो, ये नहीं है। कह रही फिर जुल्म नहीं है? मैंने कहा इसको अल्लाह ने किसी और तरह से बाउंड किया है। वो कह रही मर्द और औरत के तो हुकूक इस्लाम में बराबर हैं। मैंने कहा बराबर है, सेम नहीं है, बराबर का मतलब ताकीद में बराबर हैं, एक जैसे हुकूक नहीं है। वरना फिर एक ही जैसे हुकूक डालने होते तो उसको आदमी बनाने की और आपको औरत बनाने की जरूरत क्या थी? आजकल जो लिबरल आजकल स्कॉलर भी इसी तरह के आ रहे हैं, मजहबी स्कॉलर, वो खवातीन से फेवर लेने के लिए ना खवातीन के हक में बोलते रहते हैं। हालांकि वो उन खवातीन को नहीं पता होता ये हमारे हक में बोल तो रहे, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی، عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں تو آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. اللہ کہتے ہیں نہ، ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی جو جتنی سزا اس کو ملے گی، تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے. لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ ایک جیسی تھوڑی ہے، وہ الگ الگ ہے. آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں، تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں، وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہی ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں، جو پورے نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی. تو دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت ہو رہا ہے. مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ، تم گھر پہ رہو، تمہیں اجازت نہیں ہے. جب میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو تو تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کل جو کیس آیا نا، وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میاں ہے، یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں میں، بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کوئی چرس پینے تو جا، ہاں چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو، پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو، پھر یہ بتانے کا نہیں ہے. نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں؟ نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں کو؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا ہے نا، تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے، رپورٹ پیش کریں، مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا، کیا خیال ہے؟ میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے پوچھوں گا، بتاؤ کتنے چور پکڑے، اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا یہ مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی، جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات ایک الگ بات ہے، اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو. لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں، یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا؟ بنے کہ فیور کہاں دیا، بیڑا غرق کر دیا اسلام نے اس کا، مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا؟ یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی ابھی، چھوڑو بھائی. یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا، وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو، جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی، ادھر جا کے بیٹھ گئی، تو جب دونوں سیم ہیں تو سیم ہے تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں گا جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمے گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم ہے، پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے، بیمان فقو من اموالہم، کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں، بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی، آپ پر آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں، آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں، پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمے ہے؟ وہ آپ کے ذمے. تو آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے پھر اس کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کرے. اور ذمہ داری سے بیسک ذمہ داریاں ہیں، بیسک ذمہ داریاں. کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں وہ ہماری تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، ہم نے اس دن پیزا منگوایا تھا وہ نہیں لا کے دیا تھا انہوں نے، ہم نے میں نے کہا تھا کہ آپ نے کرولا رکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کم از کم ایک ایف ایکس ہو. تو یہ اچھی بات ہے دے دیں بیگم کو لے کے، لیکن یہ نان نفقے میں نہیں آتی یہ چیزیں. ہاں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن نان نفقے میں یہ نہیں آتا ہے، بیسک نان نفقہ اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کے جس کو جو بنایا، ہاں اللہ بعض دفعہ نا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کچھ معذور بھی پیدا کر دیتا ہے، کچھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی پیدا کر دیتا ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے, معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا, وہ تو بیماری ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا, جیسے بیج ڈالتے ہیں بعض دفعہ جل جاتا ہے, پودا نہیں اگتا, لیکن جب اگتا ہے تو کون اگاتا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں تو کوئی, وہ تو سوچتے چلے جاؤ, بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو, چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا یہ ایٹم, اس کو توڑتے چلے جاؤ نا, عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں, سورج ہے اور زمین گھوم رہی ہے, توڑتے چلے جاؤ گے یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا, الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں ہر جگہ, ایک ہی اکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا اور حرکت میں چلایا اللہ نے, اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے؟ حرکت ہے, اس لیے مشہور ہے حرکت میں برکت ہے. جو بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا رہے گا نا سیٹ رہے گا, جو بیٹھ گیا وہ مر گیا, یہ ذہن میں رکھنا. سست ترین, جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن, جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کر رہے ہو تم, بھاگو دوڑو اچھلو کودو پسینہ نکالو تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید, جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کا فعال, کر گزرتا ہوں اس کو, جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہاں لاجک سے چیزیں اللہ نے جوڑ دی ہیں. اس پہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک ہمارے ایک فالج زدہ بےچارے بوڑھے ملے, پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا, کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا, میں بلڈ پریشر بھی تھا, کولیسٹرول بھی تھا, شوگر بھی تھی, تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بےچارہ, اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے, تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا, تو کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے, تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں, تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا, کہہ رہے ہیں ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا, تو ایک کوئی صاحب آئے انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا, بہت خطرناک پیشنٹ تھا وہ, بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو, وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا, دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے انہوں نے. یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت, اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں تھے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا, پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے ہیں, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے ان کا. یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج, جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں, ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو. ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا, اور خوشخبری دی جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. तो मशवरा हुआ। अब उन्होंने ये नहीं किया कि जी एक तरफ से समंदर है, वहां भी समंदर कटा हुआ है ना, आप मैप में देख सकते हैं, तो समंदर में हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह बढ़ के समंदर भी निकल जाते हैं, बढ़ जाना तो डूब जाना था उन्होंने और क्या। तो अल्लाह कहते हैं पहले अपने सारे असबाब और वसाइल को इस्तेमाल करो, फिर मेरी मदद आएगी। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवरा लिया, भाई क्या करें यार, ये तो नामुमकिन है, पीछे पूरा यूरोप था ना, वहां से भी तो मदद आ रही थी इनकी, तो नामुमकिन था असबाब की दुनिया में भी 600 साल हो गए, इलाका ही नहीं फतह होके दे रहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना है भाई। तो माहिरीन बैठे, उन्होंने मशवरा दिया, इस्तिहारा नहीं निकाला, खूब समझ लो, इस्तिहारा निकाल के देखते हैं फतह होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो। देखो वो असबाब भी इख्तियार करते थे और अल्लाह से दुआएं भी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के लश्कर में हमेशा कोई ना कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग उस वक्त के होते थे, उनको सिर्फ दुआओं के लिए लेके जाता था, वो देखता था ना एक बुजुर्ग हैं, वो लड़ नहीं सकते, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं हजरत आप हमारी सफ में होंगे, जिक्र करेंगे और अल्लाह से दुआएं, क्योंकि अल्लाह तकवा और जिक्र पर मदद करता है। तो ऐसे सेकुलर नहीं थे कि हम अपनी तोपों पर एतमाद कर लें खाली, ना ना ना, हमें अल्लाह वाले बुजुर्ग भी चाहिए। तो एक ना एक बुजुर्ग उसकी सफ में हुआ करते थे जिनका काम है अल्लाह से दुआएं मांगना, खुद भी मांगता था लेकिन भाई हम वो अपने आप को समझता था हम इस लेवल के नेक नहीं है, तो ऐसे एक बुजुर्ग होंगे, इनकी बरकत होगी, अल्लाह हमें फतह देगा। और दूसरा असबाब भी दबा के इस्तेमाल किए उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब देखा ना ये इतना बड़ा किला और इतनी चौड़ी दीवार, मैंने वो व्लॉग पे आप देख ले उसको, इतनी चौड़ी दीवार है भाई, उस पर तो पूरी बैलगाड़ियां चलती थी दीवार के ऊपर, इम्पॉसिबल, नामुमकिन उसको फतह करना। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बुजुर्ग भी रखे अपने पास, अल्लाह अल्लाह भी हो जिक्र भी हो, और फिर अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई उस वक्त इस किले को फतह करने के लिए, जिसको देख के आदमी, वो तोप मैं देख कर आया हूं उसका डिजाइन, या शायद वही तोप रखी हुई मुझे याद नहीं है, इतनी बड़ी तोप बनाई है ना, उससे जो लोहे का गोला निकलेगा तो दीवार में कुछ हिलाएगा थोड़ा सा वो दीवार को, जो ऐसे जब 1,000-2,000 गोले निकलेंगे तो शायद दीवार में कुछ दराड़ आ जाए, इतनी स्ट्रगल की उसने। और इतने लोग, हमने तो तुर्की में ना, उन्होंने वो बनाया हुआ है एक ऑडिटोरियम में ना, वहां पर एक जैसे नहीं सैयारा का हमारे यहां आपको मिलती है इधर प्लानिटोरियम, देखा होगा आपने, तो ऐसे ही उन्होंने वो पूरी तारीख दिखाते हैं वीडियो की शक्ल में, बड़ा मजा आता है वो देखने में, बड़ा जोश पैदा होता है यार, क्या खून खराबा और उधर से गोले, पूरा वो मंजर उन्होंने तारीख की किताबों से निकाल के उसको फिल्माया है, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रोजेक्टर पे, बल्कि आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वहां 3D में, आप समझ लें, आपको लगेगा आप वहां पहुंच चुके हैं, वो ऐसा चीखें निकलती हैं यार वो मंजर देख के, ऐसे थोड़ी पेड़े खाए हैं मुसलमानों ने यार, पूरी दुनिया पे हुकूमतें की हैं, आज बैठे हैं वजीर आजम बन नहीं रहा, सही है ना। बहुत मेहनतें की हैं मुसलमानों का माजी, बड़ा खुदा की कसम शानदार था, मैं बार बार कहता हूं ना, एक गोरे की वीडियो भी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, वो लंदन में या अमेरिका में, मैं भूल गया, यूनिवर्सिटी में वो गोरा लेक्चर दे रहा है, अभी मेरे मोबाइल में वो वीडियो पड़ी हुई है, वो गोरा लेक्चर दे रहा है, गोरा कह रहा है तो वो काला, लेकिन गोरा इस सेंस में कह रहा हूं कि अमेरिकन है, इस सेंस में कह रहा हूं, या तो मेरा ख्याल है अमेरिकन है, यूके का नहीं है, वो उनका जो लबो लहजा है ना वो अमेरिकन लबो लहजा, वो यूनिवर्सिटी में लोगों को बता रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम था कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा दुनिया में कोई साइंसदान नजर ही नहीं आता था, हर फील्ड में कौन सा साइंटिस्ट था, मुसलमान, और वो कह रहा है कि फलकियात के इल्म में मुसलमानों ने इतनी तरक्की की थी, फिर बगदाद की यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा है वो, बगदाद में जो हमारी खिलाफत थी, तो वो कह रहा है कि आज भी जितने सितारों के नाम है ना इंग्लिश में, सारे अरबी से आए हैं, सारे कहां से आए हैं, ये अरबी से आए हैं, मुसलमान ये काम बहुत पहले कर चुके थे, बड़ा शानदार माजी था हमारा, लेकिन ऐसा खत्म हुआ, ऐसा लगता है हम हमेशा से ही इसी तरह हैं, हमेशा से ही हमसे वजीर आजम बन ही नहीं पाया कभी, तो ऐसा नहीं है, माजी हमारा और ज्यादा पुराना माजी नहीं है, 150-200 साल से ज्यादा पीछे की बात नहीं है, ये चंद गलतियां हुई हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, उसमें मजहबी लोगों से भी हुई है, हुक्मरानों से भी हुई है, दोनों तबकों से हुई है, किसी एक तबके को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि मजहब को साइंस से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जबकि हमें दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात में क्या मिलता है, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब दुनिया का हुक्मरान बनाया है तो अल्लाह ने असबाब और वसाइल भी दिए थे उनको, वो असबाब क्या थे, लोहा उनके हाथ में पिघला दिया अल्लाह ताला ने, داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہ بناؤ زرہ. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا لڑائی کرے گا, زرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری دس دس سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیم حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. دو تین موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو, بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, تیس تیس سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا, اس امید پہ تیس سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا تیس سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے دماغ کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو ایک سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے, انک لا تہدی من احببتا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. ایک سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں, اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بےچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, زرہ بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑے کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جب زرہ بنائی جاتی ہے نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہے اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے, تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہ بنا لے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کے. خیر, تو قدر فی سرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کچھ کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے. مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا, जब कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो, तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल, तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई। खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई इन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भ्रम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भ्रम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भ्रम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, तेवन ज्यादा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है। हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीर अल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है, ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी। और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है, आप लिबास का पड़ता है, आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हो, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए जाहिर, हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया, भाई वो उनकी उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोब दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवन ज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि एक महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है, भाई आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना थ्री पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजा ले कोई पेवन ज्यादा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान, धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो उस डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है, शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट आए हुए थे, गपशप थी उनके से। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें, जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे, अगर पुल होता तो वो दरिया में घोड़े नहीं दौड़ा, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूं, पुल बनाने का टाइम होता, असबाबो वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है, उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए हैं, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए, भाई यहां पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हटके आगे पानी है, तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा सहाबा कराम ने पानी में घोड़े दौड़ा लिए थे तो हम भी खुश्की तक जाएंगे और कुसुंतरिया में बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बाकी बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह फूंकों वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया था यार। ये तो पहले जहन में आ जाता ना मेरे, बहुत लेट आया दिमाग में। एक शुभ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता शुभ, और पूरा कुसुंतरिया ही बढ़ जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है, बंदा कौन जीत रहा है एकदम शुफ करके शुफ फौरन नीचे। ऐसी ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग टीवी के आगे खबरों में बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो दिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ, फौरन हम कहां चले जाएंगे ऊपर। तो अच्छा खैर, समझ गए ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुभ सरकार है, तो बड़ी पावरफुल सरकार है वो, उसका शुभ असल शुभ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुभ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहा है ना, ड्रामा कर रही है। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया, भाई क्या करे। तो मशवरा यही तय हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया कि देखो, हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जहाज नुमाई थी वो, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह, मजीद 600 साल लग जाएंगे हमें, नामुमकिन है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जाने जाया हो रही हैं, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं, तो अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। अब ये बहुत मुश्किल काम था, क्यों, रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाजों को, तो उसका तरीका ये है कि जितने जानवर है ना, ऊंट गाय दुम्बे सब जबा कर दो, और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल दो। और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है, क्योंकि अगर धक्के दे देके तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहां से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा, ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तस्वुर नहीं था, इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंदे और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, चालीसवें के नाम पे, शबे बरात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते, बोलते क्यों नहीं। मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, कुछ लोगों का नेचुरली पेट बढ़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था, लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा, ये हदीस है सही। तो कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है, फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात, जो ईसाइयों की स्टेट थी उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई, किसी का दिमाग यहां भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहां भी जा, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पर सबको पार किया, पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी, सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका था। और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता, इधर से इन्होंने तीरंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया, वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे आए कहां से हैं ये लोग, बीच में तो खुश्की है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती हैं, वो जूं से नहीं बन जाती खाली कौमें, समझ रहे हो। अभी छोड़ो ये, फिर ये जूं काट देना यार, ये एक मीम है, फिर वो अच्छा नहीं है। तो वो है ना, मैं जापान गया, जूं वो देखा है आप लोग, अबे नहीं आप लोग मीम्स नहीं देखते आप लोग, मुझे लगता है। खैर, मैं हमारे साबिक वजीर आजम का बयान आया था कि मैं जापान गया, जूं आवाज आई, फिर मैं जापान गया, जूं आवाज आई, तो ऐसे बनती हैं कौमें, जूं तो लोगों ने बड़ी ये कट कर देना, वो वरना फूंको जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसल। अच्छा खैर, तो खैर, तो ये है अस्बाब। अब मूसा अलैहि सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारें और वो 12 चश्मे उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता? अल्लाह में कहते पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना कि भाई फिरौन पीछे से आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये वाला रास्ता यहां से, तो भी ये ना होता, ये वाले रास्ते से जाएं। जब तक असबाब इख्तियार करना मुमकिन होता है, अल्लाह की आसमानों से मदद नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहते हैं पहले पूरे असबाब तुमने इख्तियार करने हैं, उसके बाद फिर मैं जहां तुम खत्म हो गए वहां से मैं शुरू होऊंगा। हम लोग कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट कहां इस्तिखारों पे चले जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो कि आजकल ना एक तो लोगों में तवक्कुल वैसे ही नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गैर जरूरी तवक्कुल भी आ जाता है। उलमा ने लिखा है अगर आपको अल्लाह ने माली वसाइल दिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं जॉब गई और रोड पे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। वो कारोबार करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, कोई नुकसान हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला करोड़ों रुपए में खेल रहा था, पोल्ट्री फार्म का उसका बिजनेस था पिशावर में। तो कह रहा है यार कोई बीमारी आई, सारी मुर्गियां मर गई और मैं दिवालिया निकल गया, मेरा डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा काम किया क्यों आपने, क्या आपको पता नहीं है मुर्गियां भी बीमारियां आती हैं? कह रहे आती हैं लेकिन मैं तो वैक्सीन हूं। मैंने कहा क्या आपने तहकीक नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद ही बाद सारी मुर्गियां मर जाती हैं? तो कुछ तो आपको रखना चाहिए था ना। इसलिए उलमा ने बयान किया है भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कम से कम एक साल का जो है ना नान नफका संभाल के रखो कि अगर मैं जॉबलेस हो गया तो एक साल मैं इतना कमा लूं, एक साल का मैं इतने अपने पास रिजर्व रखूं कि कम से कम एक साल में अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं और इस दौरान मैं कोई दूसरा कारोबार कर सकूं, कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकूं। हां इससे बहुत ज्यादा 10-10 साल की 20-20 साल की प्लानिंग फिर ये तवक्कुल के खिलाफ है, लेकिन एक साल, दो साल, डेढ़ साल कुछ तो करे ना आदमी। नहीं जी, जिस अल्लाह ने आज खिलाया कल भी खिलाएगा। तो अगर अल्लाह ने इस तरह से वादा किया होता तो फिर लोग रोडों पे क्यों बैठे हुए होते, झोपड़ों में क्यों सो रहे होते? फौरन एक आयत पढ़ लेते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन आप पूरे असबाब और वसाइल इख्तियार करोगे। हाँ हवस ना करो जैसे जमा कर करके कर करके लोग पागल हुए हैं, ये गलत है, लेकिन ऐसा तवक्कुल जायज नहीं है कि आप जो है वो जो अल्लाह ने असबाब और वसाइल रखे हैं उससे भी को भी आप इग्नोर करना शुरू कर दो। हालात का कुछ पता नहीं होता। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह तआला तो बहुत तवक्कुल वाले थे, लेकिन उसमें बहुत हसास थे वो। जब जबान से जो मुंह से निवाला छिनता है ना, ईमान भी जाता है आजकल लोगों का। एक रिवायत है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन वो कादल फकरू अं यकून कुफरन औ कमा قال صلى الله عليه وسلم, फरमाए फकर व फाका बाज़ दफा कुफर तक पहुंचा देते हैं। औरतें अपनी इज्जतें बेचने पे आ जाती हैं फकर व फाका की वजह से। तो ऐसा तवक्कुल ना नहीं किया जाए। तो इतना कम से कम अपने पास हो कि भाई कल आप अगर खुदा ना खास्ता बेरोजगार हो जाते हैं, और ये कि आपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और फर्ज करके बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगी है अब इन पे कोई बीमारी नहीं आई, भाई दुआ भी मांगो बीमारियों से। मेरा तो पूरा देखो ना, अभी 35 मुर्गियां मर गई मेरी, एक बीमारी आई थी एकदम जनाजे उड़ो, छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन वो 2.5 साल से मरी नहीं थी, मरी है तो टक 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 कुछ बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नहीं मरी है क्योंकि वो हमारे घर ही के चूजे थे जो बड़े हो गए, तो एक गलती हुई थी मुझसे। अब इंशाल्लाह आइंदा वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन तजर्बा तो बढ़ गया ना, नुकसान तो हो गया ना। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल इसका एक मतलब है जो शरीयत ने बताया है। तो वो शुगर के पेशेंट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हजरत जो घोड़े दौड़ाए थे ना सहाबा किराम ने, वो पुल नहीं था वहां पे, इस वजह से मजबूरन दौड़ा लिए थे, तो अल्लाह मियां ने मुझे खाने की इतनी चीजें दी हैं कि मैं भूख से मर नहीं रहा हूं। अगर मर रहा होता तो जान बचाना फर्ज थी, फिर मैं ये शरबत का गिलास अल्लाह पे तवक्कुल करके पी लेता कि फिलहाल तो जान बचाओ, फिर देखेंगे शुगर कहां जा रही है कहां नहीं जा रही, या और चीजें जो है वो मेरे लिए दुनिया में खत्म हो गई हैं, या शुगर से मैंने मरने का इरादा ही कर लिया है, खुदकुशी का इरादा ही कर लिया है, तो पी लूंगा। तो कभी भी इस तरह के ये बेमौका तवक्कुल होता है। एक और हमारे दोस्त थे, उनको भी शुगर, वो भी इसी तरह कह रहे यार बंदा खाता हुआ बस जो 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 टेंशन लेता है ना वो मर जाता है। तो ये सब फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह ने मुसलमान जो तरक्की नहीं कर रहा ना उसमें इन बातों का बहुत बड़ा दखल है। जब ये अपर लेवल पे होती हैं तो फिर अपर लेवल पे नुकसान होता है, इनफिरादी जिंदगी में इस तरह की बातें होती हैं तो इनफिरादी जिंदगी में नुकसान होता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तब जल्दी से मैं बात को समेट के खत्म करूं जो बयान में लेके चला था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तदउ मन अदबरा व तवल्ला। तो अल्लाह के हुक्म की जो ऑर्डर है ना, अल्लाह का जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि वो साहिब कमाल और साहिब कुदरत है। उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि जितना वो हमारा करीब है इतना रिलेशन हमारा किसी और से नहीं है। देखो माँ बाप सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो हमें माँ बाप देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनी उम्महातिकुम। तुम जब अपनी माँ की पेट में जनीन थे, जनीन कहते हैं छुपे हुए, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुमको नहीं जानते थे, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, उस वक्त से तुम्हें जानता है। तो अल्लाह से ज्यादा इंसान का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तीसरी चीज अल्लाह कहते हैं जितने मेरे एहसानात हैं, तीसरी चीज एहसान होता है ना जिसकी वजह हम किसी के ऑर्डर को मानते हैं, मेरे एहसानात जितने ज्यादा हैं इतने तो यानी अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात को ना तुम कलम से लिखना शुरू करो, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन के घिस के खत्म हो जाएंगे और समंदरों की स्याही उन कलमों में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाएगी। और वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को लिखने बैठोगे कलम घिस के खत्म और समंदर की स्याही खत्म, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। और एक एक नेमत इतनी पावरफुल है ना, करोड़ों खरबों में भी वो सस्ती है। एक आंख की नेमत देख लो, आपके पास एक करोड़ रुपए हो, खून पसीने की कमाई हो, एक बंदा कहे करोड़ दे या आंखें दे, क्या दोगे आप? आप करोड़ रुपए डाकुओं को दे रहे होते हैं ना जान बचाने के लिए, डाकुओं को दे नहीं रहे होते सुबह शाम के, जान बचे यार। आंखों की नेमत है, सुनने की नेमत है, चखने की नेमत है, हर हर नेमत, इतनी कीमती नेमतें हैं। एक एक नेमत जो अल्लाह ने इंसान को उसकी बॉडी में जो नेमतें लगा दी हैं, इतनी कीमती नेमतें हैं। तो ये अल्लाह के एहसानात हैं। अल्लाह कहते हैं इसका सोचते रहोगे ये एहसानात कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहिमहुल्लाह ताला का मामूल था, कहते मैं रात को सोने से पहले ना, क्योंकि लोगों की आदत होती है ना कि ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये मसले मेरे साथ, ये मसले, बाज लोग हमेशा मुंह उनका बिचारों का आड़ा तिरछा ही रहता है, महंगाई हो गई, ये वजीर आजम ही नहीं बन रहा, और अबे ये तो तुम्हारे मसले हैं ही नहीं, ये क्यों ले रहे हो टेंशन यार, ये हमारा काम थोड़ी है, वो टेंशन ले लो जो तुम्हारी है। तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सुबह शाम। तो हजरत मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह को किसी बुजुर्ग ने खत लिखा कि हजरत ये भी मेरे साथ मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो हजरत हकीम उल उम्मा चूंकि मुसलह थे ना, पीर और मुर्शिद, पहले पीर और मुर्शिद ऐसे होते थे, उन्होंने पूरे खत के आखिर में एक जवाब लिखा कि अफसोस के शुक्र का जुमला एक भी नहीं लिखा, सारे मसले ही बताए हैं। तो समझ गया कि भाई तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत हो गई होती तो क्या बता रहे होते, हजरत ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है ना। तो खैर वो तो फिर तरबियत हुई उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बुजुर्ग बने वो। तो वो फरमाते थे कि मैं जब रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूं, देखता हूं, ये नहीं देखता कि क्या क्या गलत है, ये देखता हूं क्या क्या ठीक है। तो मैं देखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सेहतमंद हैं, बच्चे मेरे माशाल्लाह सारे जिंदा हैं और सेहतमंद हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन खतरनाक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कल घर में घर का राशन कल का कम अज कम है, नाश्ते का भी, दोपहर खाने का भी, रात खाने का भी, अल्लाह का शुक्र सोने की जगह भी है। बहुत से लोगों के पास रात को सर छुपाने की जगह नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े हजार गज के बंगलों में एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं, कैंसर है खतरनाक, कोई टीबी हुई हुई है, कोई ऐसी डेंजरस बीमारी हुई हुई है, हम उनसे करोड़ा गुना अच्छे हैं। तो हर हर चीज में ना अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, उससे क्या होता है दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कितनी नेमतें, और सबसे बड़ी नेमत ईमान, हम उस अल्लाह को पहचानते भी हैं जिसने हमें पैदा किया। तो इस तरह से ना सोचना चाहिए हमें भी, जब पानी भी पियो ना, हदीस में आता है अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है आखिर में, काफिर नहीं कहता। आप किसी सेकुलर आज को मुसलमानों में भी काफिरों जैसे बहुत हो गए हैं, आप बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो गुस्सा करेगा आपके ऊपर, किसी मौलवियों के पास से लग रहा है बैठ के आ रहा है, मौलवियों के पास से बैठ के आ रहा है भैया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों की बात है, तो ये मौलवियों की थोड़ी है यार, ये जिसने तुम्हें दिया है आसमान से बरसाता है तुम्हारे लिए। फिर कहता है अल्लाह कहता है कि फसलकहु यनाबी अफिल अर्ज, जमीन के सोतों में दाखिल करता हूं, अरअयतुम इन असबहा माउकुम गौरन, बताओ ये पानी और नीचे चला जाए तो कौन है जो निकाल के लाएगा। पानी एक सतह तक नीचे जाता है, पेट्रोल वाली सतह पे नहीं पहुंचता पानी, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے بھائی, یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے اس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے, اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی. ایک ایک نعمت, یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا, جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے, پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولا, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمائیں اور علی وجہ الکمال جمائیں تینوں چیزیں, محبت بھی ہے, ریلیشن بھی اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی, وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی آج, وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے, عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑے کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ نہ نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی, جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے؟ معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا, غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے, تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا, رونا اختیار میں نہیں ہے, سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ وہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہیں رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں وہ. خیر, تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا, رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی, کہاں اسلام, اب مشکل کہاں سے رہ گیا. تو رونا آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو, بس کافی ہے, یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا, تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو, میں زبردستی گھسیٹ لوں, ایسا ممکن نہیں ہے. پھر جہنم خالی ہو جائے گی, اللہ نے جہنم بنائی ہے خالی رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بھرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو سنتوں کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی, سنتوں کے بعد سوال جواب کا سیشن. اگر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سود چڑھنے سے پہلے کر دیں تو کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہوتا ہے, ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیے سود لگے گا, تو یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر سود دینا نہیں ہے تو اس سے اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی پھر وہاں یہ استعمال کر سکتے ہو. بعض دفعہ اس کے بغیر شاپنگ ہوتی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے احکام الگ. یو کے میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے جس سے گھر اور گاڑی آسانی, نہیں یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے, جس سے بعد میں گھر گاڑی آسانی سے ملتی ہے نا. ایک سال کا بچہ لے کر اس کا ابو پنجاب چلا گیا, بیوی کو امی کے گھر پر چھوڑ گیا ہے, نہ بچہ ماں کو دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے, ظالم آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ کے دو غلام ہیں اور دونوں بھائی ہیں, یا بھائی ایک لونڈی ہے اور ایک لڑکا ہے, لڑکی ہے وہ آپ کی باندھی ہے اور لڑکا آپ کا غلام ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کرنے کو حرام قرار دیا ہے. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں قیدی بن کے آئے نا, دو بھائی قیدی بن گئے, دونوں غلام ہیں, آپ نے ایک بھائی کو بیچ دیا کسی وہ تھرڈ پرسن, وہ نابالغ کی بات ہو رہی ہے, ایک کو بیچ دیا آپ نے کسی تھرڈ پرسن کے ہاتھوں, اب وہ دونوں بھائی کیا ہو گئے ایک دوسرے سے جدا. اس بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس کو حرام قرار دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ خونی رشتہ, باپ بیٹا جنگ میں غلام ہو گئے, اب دونوں ایسا نہیں کر سکتے باپ کو بالکل کہیں الگ جگہ بیچ دے, باپ بیٹے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے, یہ غلاموں کے حقوق میں ہے. یہ دو بہنیں لونڈی بن کے آ گئیں, غلام بن کے آ گئیں, اب ان کو بیچ کے جدا نہیں کر سکتے آپ. بہت سخت اس پہ وعیدیں ہیں. آزاد کر سکتے ہو ایک کو, کسی ایسے اجنبی کے ہاتھوں بیچ نہیں سکتے, کیونکہ محرم رشتہ ہے نا یہ. جو بھی محرم رشتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں, ان میں تفریق کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. تو یہاں بھی ماں بیٹے کا رشتہ تو باپ بیٹے, باپ اور اولاد کا اور ماں اولاد کا رشتہ تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا, وہ بندہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, کہہ رہے میری بیوی سے علیحدگی ہوئی ہے, وہ میری بچی لے کے غائب. کہہ رہے مجھے نماز میں وہ بچی آ رہی ہے, میں سوتے سوتے اٹھ جاتا ہوں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے, اتنا اس قابل ترس تھا وہ. کہہ رہے میری بیوی نے بچہ ہی غائب کر دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو عدالت سے تو نہیں ملے گا, عدالت تو ایسا ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کتوں کی طرح ذلیل کرے گی, کتوں کی طرح. ہمارا قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لا میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ, اور ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی, کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہیں, میں نے کہا کورٹ سے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں نے کہا اب دو ہی راستے ہیں, یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو, بس شادی کرو, بچے پیدا کرو, اس بڑے ہو کے آنا ہوگا آ جائیں گے, نہیں آنا ہوگا تو سمجھو میری زندگی سے کیا ہو گئے, مر گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ, میں نے کہا کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دیں بچہ, ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. میں نے کہا آپ یہ کہو یہ بچی چھوٹی ہے, مجھے ہفتے میں ایک دن دو گھنٹوں کے لیے ملاقات کرنے ہے, اور کوئی خرچہ ورچہ طے کر دو, بچی کا آپ دو خرچہ. کورٹ میں تو کتوں کی طرح, کورٹ میں ملاقات ہو جائے گی لیکن کئی مہینوں کے بعد جا کے ہوگی, ایک بات. دوسری اس کی شرائط اتنی خطرناک شرائط ہے نا کہ جج کبھی خود بھگتے تو پتا چلے گا اس کو, اس میں عورت کا موڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہی میں نہیں لا رہی ہے, وہ جائے گا اپنا خرچ کر کے, پھر آنے کا کرایہ بھی آپ دو گے بہت ہے. کورٹ میں ملو گے آپ, عدالت میں باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہو تو ویسے ہی وہ دو ٹکے کا نہیں رہتا, بچوں کی نظر میں بھی نہیں رہے گا, وہ سمجھے گا مجرم ہے جو کورٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں, میں نے کہا یا تو بدماشی کرو. کہہ رہے میں نے کی تھی, مجھے سالوں نے مارا, مار کی پرنی توڑ تاڑ دیا. تو میں نے کہا آپ دس بندے لے کے جاؤ. میں نے کہا دیکھو بدماشی کے بغیر پاکستان میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا, یہ ذہن میں, اور حق کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ کہ اٹھا کے غائب ہی کر دو, نہ نہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن دو گھنٹے تین گھنٹے, یا آپ نے بچے کو نانی سے بھی دادی سے بھی تو ملوانا ہے نا, اس کو اپنے گھر لاؤ گے بھائی, سب کی گودوں میں پلے گی وہ, پھر چلے جائے گا, یہ تو لازمی حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طلاق کے بعد زیادہ تر خواتین, ساری نہیں, زیادہ تر خواتین کے کیس ہی آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں, مظلوم ہیں لیکن بہت سی ظالم بھی ہیں. تو ایک طرفہ یک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا, زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے, اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو, وہ تو پاگل ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں, وہ نفسیاتی بن جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بھائی قرآن کے دیکھو سورہ بقرہ کے اللہ کے کیسے پیارے الفاظ ہیں, فرمایا لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. یہ سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی گود میں رہے گا وہ, اور باپ جب چاہے گا اس سے ملتا رہے گا. ماں کما نہیں سکتی لہذا خرچہ کما سکتی بھی ہو تو خرچہ کس کے ذمہ ہے بچے کا, باپ کے ذمہ. لیکن جب باپ خرچہ اٹھا رہا ہے تو مرضی کس کی چلے گی, باپ کی, گود ماں کی ملے گی. آرڈر کس کا چلے گا, اسکول کون سا پڑھنا ہے, مدرسہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے, کون سے اسکول جانا ہے, तो जब खर्चा उस पर डाला जा रहा है तो ऑर्डर भी उसका चलेगा। अदालत कुत्तों की तरह गधों की तरह बाप को इस्तेमाल करती है, कहती है 18 साल तक खर्चा तुमने देना है, चलेगी किसकी इस पे, मां की चलेगी। तो कहेगा जब मेरा कुछ ना, मैं मेरी गोद में आ रहा है वो, सही है ना, ना मेरी मर्जी चल रही है, तो खर्चा मैं किस बात का दूं। तो ये ना यूरोप के हैं ना इस्लाम के हैं, समझते हो, गोरों में फिर भी सारा खर्चा बाप पे नहीं डालते हैं, वो मां पे भी डालते हैं बाप पे भी डालते हैं। हमारी अदालतें अंग्रेजों से आगे निकल गई हैं, और गोरों में बच्चा भी बाप से मिलता है, मां भी मिलती है। हमारे यहां तो ये जो है ना वो उनसे भी आगे निकल गए, ये उनके यहां इतनी हक तलफी नहीं होती बाप की जितनी हमारे यहां हो रही है। समझते हो या नहीं समझते हो, तो कोर्ट का कानून तो पता नहीं चेंज होना हो। हमारे सियासी जमातों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मजहबी जमातों को, ना तीसरी, उनके अपने ही उस मसले हैं, वो आपको पता है क्या मसले हैं। तो खैर जो ओरिजिनल मसाइल है ना हमारे, जिन पे लोग पे जुल्म हो रहा है वो तो है ही नहीं है, तो वो तो जो जिस पे गुजरती है फिर वो भुगत रहा होता है। तो अब क्या मसला है कि अदालत से सारा खर्चा बाप पे डाल दिया, बाप की चलती नहीं है। तो अल्लाह मियां ने उसूल बयान कर दिया, भाई बच्चे की मां की गोद से आप छीन नहीं सकते, मां तो मर जाएगी बेचारी, बाप उससे हमेशा क्या करेगा, मिलता रहेगा, जब चाहेगा मिलेगा उससे, कभी कभार रात गुजारने के लिए भी अपने घर ले जाएगा उसको, ताकि बच्चे उसके खानदान से मानूस रहें, क्योंकि सिर्फ बाप थोड़ी, आगे दादी भी तो है ना, फूफियां भी तो हैं, सब लोग हैं, इस्लाम में तो खानदानी निजाम है। और फिर बच्ची जब 9 साल की हो जाएगी तो बाप के हवाले की जाएगी, वजह उसकी है कि अब उसको हिफाजत की जरूरत ज्यादा है। फुकहा बयान करते हैं, लिअन्न बिर्रिजाल मिन अलगैरति मा लैस बिन्निसा, अब वो जवानी के करीब पहुंच रही है, अब उसको मर्दों की हवस से बचाना, बॉयफ्रेंड से बचाना, और ये सारी, इसमें बाप ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि मां का रोब नहीं होता, रोब किसका होता है, बाप का होता है। समझते हो कि नहीं समझ, जब बालिग हो जाएगी तो फिर बाप उसकी शादी कर देगा, अपने घर पे हो गई खत्म, कितना आसान से हल कर दिया। और जो लड़का है वो 7 साल का जब हो जाएगा तो किसके पास चला जाएगा, वो बाप के पास, क्योंकि अब उसको निगरानी की जरूरत क्या है, ज्यादा है। लेकिन लड़की 9 साल की जब बाप के पास आएगी और लड़का 7 साल का, तो अब मां उससे मिलने से रोक नहीं सकता, मां के पास रात भी गुजारेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि अब बाप ने ले लिया तो अब मां से, ना 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 भाई, जाओ आज तुम नानी के यहां, जैसे जो जाते हैं ना बच्चे नानी के यहां जाते हैं, हमारे बच्चे भी नानी के यहां गए हुए हैं, ठीक है ना, तो नानी के यहां जाओ भाई, एक दिन एंजॉय करो नानी के यहां, कल वापस आ जाना, हमेशा वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि ननियाल में बिगड़ने का अंदेशा ज्यादा होता है, ददियाल में बिगड़ने का अंदेशा कम, क्योंकि ददियाल को अल्लाह ने थोड़ा सा करख्त बनाया होता है, ननियाल में शफकत ज्यादा रखी है, तो बचपन में शफकत की जरूरत है, लिहाजा ननियाल को वैल्यू दी जा रही है, और जब थोड़ा समझदार हो जाता है तो अब तरबियत की जरूरत है, थोड़ा सा रोब और डांट टपट की जरूरत है, तो अब किसके हाथ में जाएगा ये, बेटी भी और बेटा भी किसके हाथ में, बाप क्या, मां मिलती रहेगी उनकी। और जब लड़का बालिग हो गया तो भाई फिर तो उसकी अपनी जिंदगी है, ये तो थोड़े दिनों की कफड्डा है ना, बुलूगत के बाद तो लड़की ने शादी करनी है, और लड़का क्या है, वो कमाएगा अपने, भाई बेटा तू अपना घर बना, शादी कर, जैसे हमने अपने बच्चों को बोला ना, जो बालिग होता जाए कमा ले शादी कर ले, यहां नहीं आएगी बहू, अपने बना ले घर भाई, ले जा, यहां क्यों नहीं आएगी, हमको पागल है इसलिए नहीं आएगी यहां पर, आसान जवाब है, इसलिए कि बहुओं के बखेड़े, आज बहुएं आड़ी तिरछी कितनी उड़ी, सासों बहुओं के झगड़े कौन निमटाएगा बैठ के, ससुरों के बहू से इतने झगड़े नहीं होते, सास बहू के झगड़े शुरू हो गए मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई तू सही कह रही है, तू सही कह रहे हैं, तू कौन सही कह रहे हैं, तो जिंदगी में और भी तो हमने बहुत सारे काम करने हैं भाई, इसलिए हमारा तो उसूल है, बच्चा बड़ा हुआ बच्चे को मैं कभी शादी से इंशाल्लाह रोकूंगा नहीं, और हो सकता बल्कि वो उम्मीद है ताऊ नहीं करूंगा उसके साथ निकाह में, बोलूंगा बेटा खर्चा भी तेरा होगा, क्योंकि अगर बाप के खर्चे पे सारा काम हो जाए ना तो बच्चा ऐसे सुस्त बनता है ना, वो फिर कुछ करने के काबिल रहते ही, मैं उसको बोलूंगा हाँ मैंने देखा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, फिर हो सकता है अपने खर्चे पे कर दूं, लेकिन भाई बहू इस घर में नहीं आएगी, मेरा उसूल है, कोई शरीयत का नहीं है, लेकिन तजुर्बों से हमने सीखा है ये कि भाई अपना अपना अखपल तरीके से हम आ जाएंगे, हमारी बहू ने खिदमत कर दी ठीक है, नहीं की तो कम अज कम घर में फड्डे तो नहीं होंगे ना, अल्लाह ने हमें लड़ाइयों को सुलझाने के लिए पैदा नहीं किया, और बहुत सारे काम है, खाली यही नहीं है कि बैठ के, इतने मसले हैं ना, मर्दों की लड़ाइयां हल हो सकती हैं, दोनों पार्टियों के फड्डे सुनो, उसके बाद फैसला करो, भाई आप गलत हो, आप सॉरी करो, वो कहेगा चलो ठीक है मुफ्ती साहब ने बोल दिया, आप सही हो और आप ये करो, इतने पैसे इसको दे दो, खत्म। तो आदमी पागल हो जाता है भाई, समझ में ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। तो अल्लाह मियां ने जो है ना वो देखो, कबूतर के बच्चे जब बड़े होते हैं घोंसले से निकालो उनको, तो इसलिए ये मसाइल अपने आप को क्यों मसलों में डालते हो, ना डालो अपने आप को मसलों में। तो बहनें आजकल तो इकट्ठी नहीं रहती घरों में मोहब्बत के साथ, तुम क्या सास बहुओं को रखोगे यार, जहां रह रही है वो रहती ना है मोहब्बत से, मैं नहीं कह रहा वो अलग हो, लेकिन अपने बारे में अपने बच्चों के बारे में उसूलिया रखो भाई, बड़ा हुआ यहां से नहीं बेटा अलग घर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के वालिद ने यही किया था, फरमाया जब जैसे मैं बड़ा हुआ ना जवान हुआ, उन्होंने कहा बेटा शादी करोगे लेकिन बहू इस घर में नहीं आएगी। अब आप कहोगे मेरी खिदमत कौन करेगा, तो खिदमत वाली बहुएं मार्केट से क्या चल रही हैं, क्या चल रही है, वंस अपॉन अ टाइम खिदमत हुआ करती थी, और जिसने करनी होगी ना वो दूसरे घर में रह के भी कर लेगी, वो खुद ही अपने शौहर को कहेगी कि सास ससुर को यहां लेकर आओ, जिसने करनी होती है वो खुद बुला लेगी, अभी बुढ़ापा मेरे पास गुजरेगा उनका, सास ससुर की मैं खिदमत करके जन्नत कमाऊंगी। वरना बहुएं आजकल कहां, बहू क्या मर्द भी ऐसा ही है ना, औलादे मां बाप की खिदमत नहीं कर रही, तुम बहुओं से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। तो खैर बात को मैं समेटूं जल्दी से, कहां जा रहा था मैं, किधर को, एकदम बहुत गाढ़ा तिरछा हो जाए। तो अल्लाह मियां ने मियां बीवी का जो एक उसूल और बयान किया है ना तमीज से, सऊदी अरब में ऐसा ही होता है, वहां तलाकें होती हैं, बच्चे नहीं रुलते वहां पे, तलाकें वहां भी होती हैं, बच्चे नहीं रुलते अरब कंट्रीज में, बच्चे मां के साथ भी रहते हैं बाप के साथ भी रहते हैं। हां मां ने अगर शादी कर ली है ना कहीं, फिर बच्चों को सौतेले बाप के साथ नहीं रख सकती, फिर कहां रहेंगे वो, ओरिजिनल बाप के साथ, खूब समझ लो, तो फिर नहीं रख सकती, क्योंकि जब ओरिजिनल बाप मौजूद है तो फिर सौतेले के पास क्यों, फिर दादी के पास रहेंगे, बाप भी नहीं बल्कि दादी, क्योंकि छोटे बच्चे को तो दादी पालेगी ना, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो अल्लाह मियां ने तो ये मोहब्बत से कर लो, लेकिन ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भी इंसाफ ने ऐसा किया, बच्चे को लेके भाग गई है, मां रो रही है, क्या गुजर रही है उसके ऊपर, क्यामत, मां तो ऐसे यार, वो तो खुद सोचो अपनी बीवियों को देखा करो कैसे बच्चों को पाल रही होती है, तो ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है औरत के ऊपर। तो इसलिए बस यही है, अल्लाह मियां ने क्यामत रखी है। मैं जब भी ऐसे वाकयात देखता हूं ना तो मैं कहता हूं यार अल्लाह मियां ने सच्ची मुच्ची में वाकई आखिरत रखी है, अगर अल्लाह ने मार के हमें मिट्टी करके खत्म करना है ना, तो अल्लाह तभी तो कहता है ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है, अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, कि नेक लोगों और मुजरिम लोगों का अंजाम मैं बराबर कर दूंगा। तो अल्लाह कहते हैं ये तो किस पर इल्जाम है, ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं बराबर नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने आखिरत रखी है, और ऐसे जालिमों को हमारे नबी तो कह रहे हैं दो गुलामों में जिसने फर्क कर दिया भाइयों में, जो गुलाम थे एक को कहीं और जाके बेच दिए, उनके खूनी रिश्तों में फासले डाल दिए, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वईदे सुना रहे हैं। और आप मां को बेटे से जुदा करो या बेटी से जुदा करो या बाप को बेटी से जुदा करो तलाक के बाद, तो ये कैसे छोड़ेगा अल्लाह ताला। तो मैंने उस बंदे को बस यही बात कही, मैंने कहा भाईजान बदमाशी कर सकते हो तो करो, वरना मिट्टी डालो और भूल जाओ, ये बच्ची बड़ी होगी ना खुद इसमें गैरत होगी। हाँ बच्चे क्या होते हैं, मां से ना बाप के खिलाफ सुन सुन के इतना पक चुके होते हैं, आते नहीं है, ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास, हर तरह के केसेस आते हैं, मेरे को फेंक नहीं रहा होता, इतने मेरी ट्रैवलिंग है, इतने लोगों से मुलाकातें होती हैं। एक मुझे बताया एक फैमिली ने कि हमारे अब्बा ने ना हमारी मां पे बड़ा जुल्म किया था बचपन, हम छोटे थे तो हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को तलाकें दे के छोड़ दिया, अब 20-30 साल हो गए हम अम्मा के साथ ही हैं, अब्बा को हमने बहुत जुल्म। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने अपनी अम्मा से सुना है ना, अब्बा से मिले आप? कहने हम तो 30 साल से मिले ही नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा आप अपनी अम्मा को बुरा भला कहें, लेकिन एक तरफ की बात सुन के आपने ये फैसला कर लिया कि अब्बा क्या थे, एक तो जुल्म हुआ उस बेचारे को 30 साल से मिलने नहीं दिया। मैंने कहा आपके औलाद होगी ना, आप बाप बनोगे जब, और कोई आपसे छीनेगा, मैंने कहा ये जुल्म तो नजर आ रहा है, जैसा भी था है तो बाप ना, तो बाप के साथ ये जुल्म हो या मां के साथ, जो ये कर रहा है वो तो 100% बता रहे कि मैं गलत हूं, जैसा मर्जी हो बाप, इतना बुरा नहीं होता कि बच्चों को उससे मिलने से ही रोक दिया जाए। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते केस आया, एक खातून का केस था, अच्छी तरह मां भी जितनी बुरी हो इतनी बुरी नहीं होती कि बच्चों को मां से मिलने से रोक दिया जाए, मां तो है ना बच्चों की, वो चुड़ैल जाइन थोड़ी है बच्चों के लिए। वो अभी इसी हफ्ते मेरे पास केस आया इस्तिफ्ता की सूरत में, वो बताया कि जी वो खातून ने पूछा है कि जी वो जो है ना बाप जो सही नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों को मैं कराची का मैं पंजाब लेके जा रही हूं, वहीं रहूंगी और बाप से बिल्कुल अम नहीं है, क्योंकि बाप पता नहीं पीता है या क्या करता है क्या क्या। तो मैंने कहा ये तो जायज नहीं है। कह रही नहीं बाप है ही ठीक नहीं। मैंने कहा जितना भी ठीक नहीं, आपने तलाक ले ली खत्म हो गई ना बात, ठीक नहीं होने का ये मतलब होता है आपने क्या कर लिया, ठीक है आपने तलाक मांग ली उससे दे दी उसने खत्म हो गया किस्सा। तो कह रही वो चर्स पीता है या पता नहीं क्या। मैंने कहा चर्स पीता है हीरोइनची है वो, सही है ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको गंदे नाले में जहां चर्स पी रहा है तो वहां जाके बच्चा उसकी गोद में पकड़ा दो। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, बार दफा झूठ इल्जामात लगाए जाते हैं। चर्स की हीरोइनशी होता तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद कौन तलाक लेता है, फिर तो पहली रात में ही जब चर्स की बू आती है भाग जाती है खवातीन। मैंने कहा मैं एक तरफा बयान सुन रहा हूं, लेकिन अगर बिलफर्ज चर्स पीता भी है तो भी बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता। आपको इतनी दूर ले जाना कि वो मिल ही होगी, बेचारा कहां जाएगा पंजाब में मिलने के लिए। मैंने कहा जायज नहीं है। और जब फिर पता चला कि वो शादी करके जा रही है पंजाब, मैंने कहा फिर तो वैसे ही जायज नहीं है, सोतेले बाप के पास आप बच्चा नहीं रख सकती। कहती मेरा भी ये शौहर तो नहीं है, चर्सी ये कैसे संभालेगा। मैंने कहा फिर दादी के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो भाई? दादी संभालेंगी। कहनी दादी तो खुद बूढ़ी है। मैंने कहा जितनी भी बूढ़ी हो, दादी की गोद में जब बच्चा आता है जवान हो जाती है दादी, सही है ना? तो ऐसा नहीं है भाई हम किसी के आंसू देखकर एकदम कलबाजियां खाना शुरू कर दें। बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता और मां से भी महरूम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं। उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ बाप अगर चर्सी हो तो फिर महरूम कर दो, जो गुजार हो तो महरूम ना करो। तो ये तो हक है दोनों का भाई। वो चर्स पी के गलत कर रहा है, आप उससे बच्चा छीन के गलत कर रहे हो। तो बच्चा छीनना चर्स पीने से, अब मुझे किसी खातून ने ऐसा कहा ना तो मैं कहूंगा आप भी चर्स पी लें, ये कम दर्जे की बुराई है। बच्चे को ना छीने बाप से आप, ज्यादा दर्जे की बुराई। तो बच्चे भी बाद दफा छिन जाते हैं माँ बाप से बचपन में, बड़े होकर फिर वो वन साइडेड हो जाते हैं। उन बच्चों को भी चाहिए कि एक तरफा बातें सुन के कभी मुतासिर ना हो। आप अपनी माँ या बाप को बुरा ना कहो, आप बोलो भाई मेरे लिए क्या है, दोनों बराबर हैं। माँ रोक रही है ऐसे केसेस आए या बाप से मिलने से, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ आप पर मिलना फर्ज है, जितना मर्जी रोके आप बगावत करके जाओ, इसमें गुनाहगार नहीं होगे। इस तरह बाप अगर रोक रहा है उनको भी मैं कहता हूँ आप माँ को छोड़ नहीं सकते भाई। बाप कितनी बाप धमकी दे रहे नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ये कर दूंगा। भाई जो मर्जी करो, नमाज छोड़ सकते हो बाप के कहने पे? नहीं छोड़ सकते। तो माँ से मिलना भी नहीं छोड़ सकते भाई बाप के कहने पे, ये अल्लाह का हुक्म है। तो दोनों रिश्ते निभाने हैं, समझते हो? वो उनको लड़ने दो ठीक है, उनका मसला है, आपको इजाजत नहीं है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का के वालिद का हजरत हकीम उल्मा के चचा से झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों का कहीं किसी बात पे कुछ मामूली सा झगड़ा हुआ हो। तो हकीम उल्मा फरमाते हैं कि मैंने भी अपने चचा का ना थोड़ा सा थोड़ी सी बुराई कर दी, कुछ बच्चे थे उस वक्त, कह रहे मेरे वालिद ने थप्पड़ मार दिया मुझे कि भाई मैं और वो भाई हैं हमारे, हम बड़े हैं, तुम कौन होते हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें कैसे हक है। तो ये तरबियत हुई थी तभी वो हकीम उल्मा बने हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तरबियत मार्केट से क्या चल रही है? शॉर्ट चल रही, बस बहुत हो गया, मैं भी इंसान। मुफ्ती साहब मैं एक खातून आपके बयान में आई हूँ काफी दूर से, कुछ अहम मसले में आपसे बात करनी है। भाई टाइम लेके आया करो, कहाँ है ये बयान सुनने आई है खातून? तो ठीक है वो दफ्तर में बैठ जाए, और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं यहाँ मजमे से। जी तलाक नहीं हुई है, फिर बच्चा लेके मार्केट से शॉर्ट, खर्चा बाप नहीं दे रहा, बीवी गायब है एक साल से, शोहर बच्चा लेके भाग गया एक साल से गायब है, नहीं फिर तो तलाक अदालत से खुला लिया जा सकता है ना। देखो हम कोर्ट के खुला के एक तरफा खुला के कायल हैं, लेकिन बाज जुल्म ऐसे हैं उसमें जायज है, वो फस्खे निकाह होता है एक तरफा, उसमें जज को वो ये है कि शोहर गायब हो गया जानबूझकर आ ही नहीं रहा, तो औरत कहती भाई मुझे अपने साथ रखो या मेरे साथ आके रहो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता वो, फिर औरत को चाहिए कि वो तलाक मांगे भाई रहो या तो मुझे छोड़ दो, छोड़ भी नहीं रहा, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट से डिवोर्स ली जा सकती है। वो खुला नहीं कहलाता, कोर्ट तो उसको खुला कहती है लेकिन असल में फस्खे निकाह होता है। तो ये जुल्म की सूरत में जायज है ये, और जुल्म है ना ये, तो भाई रखो या छोड़ो। हाँ वो अगर कहते ठीक है मैं रख रहा हूं, फिर नहीं दे सकती कोर्ट। समझते हो कि नहीं? कोर्ट ने नोटिस भेजा, उसने कहा ठीक है मैं रखने के लिए एग्री हूं आज से, अब कोर्ट के पास ये राइट नहीं है। दूसरी बात ये, बाज लोग क्या करते हैं, शादी की और अमेरिका चले गए, यूके चले गए, बेगम को बोला हम तुम्हारा जो है ना वो वीजा लगवा देंगे, लगवा ही नहीं रहे अब एक साल दो साल तीन साल। वो औरत कह रही है भाई अब वहां जाके भूल गए याशों में लगे हुए, तो यहां भी शरण क्या है, निकाह खत्म करवाया जा सकता है। उसमें औरत ये केस फाइल करेगी, ये नहीं करेगी मुझे शोर से अलग की चाहिए ना, इस केस इस बेस पे नहीं होगा। औरत जो केस फाइल करेगी, जब भी जुल्म हो रहा हो ना तो केस कैसे फाइल करना है ये खूब समझ लें। किन सूरतों में? एक तो ये कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, जो असल में फस्खे निकाह कहलाता है, खुला का लफ्ज इस पे नहीं सादिक आएगा, वो है बेसिक हुकूक अदा ना हो रहे हो। बेसिक हुकूक क्या है? नान नफका ही नहीं दे रहा, बेसिक नान नफका, घर में राशन पानी लाता ही नहीं है वो, अब औरत कह रही है भाई मैं तुम्हारे वजह से बाउंड हूं घर में, मैं हाउस वाइफ हूं, तो अब खर्चा तुम उठाओ। वो नहीं उठा रहा, चर्स पी रहा है इधर उधर। तो औरत कोर्ट में केस करेगी, भाई ये मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो एकदम फंस के निकाह नहीं होगा, इसको ऑर्डर दो कि मेरा खर्चा उठाए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि अब तुमने स्पेसिफिक इतना नान नफका देना है, और वो तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा या तुम्हारे अकाउंट से काटा जाएगा। अकाउंट नहीं है तो ये इस पे फोर्स करेगी कोर्ट उसको। वो फिर भी इस पे एग्री ना हो, फिर कोर्ट निकाह खत्म करेगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारे सामने केस आया, खातून ने कहा शौहर नान नफका नहीं देता, हमने बुलवा लिया उसको। तो हमने उससे पूछा कि आप नान नफका नहीं दे रहे हो भाई? उसने कहा मैं तो दे रहा हूं। हमने खातून से कहा आप साबित करें कि नान नफका नहीं दे रहा, और आप बताएं कि आपके पास क्या दलील है। उसने बता दिया कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट है, मैं खाता पीता आदमी हूं, और वगैरह वगैरह जो भी थे। तो हमने कहा आपके पास क्या दलील है कि ये खर्चा नहीं दे रहा? कहां से खर्चा, क्रॉस क्वेश्चन से पता चल जाता है ना। तो खातून के पास कुछ बात निकली नहीं, हालांकि वो शरी पर्दा करती थी वो खातून। फिर हमने कहा चलो, अब हमें नहीं पता चल रहा कि वाकई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने उस खातून से कहा, और भी उलमा थे हमारे साथ जामत रशीद के, हमने कहा चले फिर ऐसा करते कि आइंदा से अगर ये देना शुरू कर दे, और देने का ये होगा कि अब तक तो इख्तलाफ हो रहा है ना, वो कह रहा है मैं दे रहा हूं, ये कह रही है मैं, ये खातून कह रही है नहीं दे रहा। हमने कहा चले अब ऐसा करते हैं कि मसला आपका खर्चा पानी का है ना, बाकी तो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, आप क्या श्योरिटी देते हो हमें शोहर से? हमने कहा कि आइंदा इसको पूरा खर्चा मिलेगा। मैंने कहा मैं आपको तरकीब बताता हूं। आपने, क्योंकि हमें बड़ा बनाया था ना उन्होंने उलमा की एक कमेटी को, केस औरत ने फाइल किया था हमारी अदालत में, यूं समझ लें, और हमने शोहर को नोटिस देके बुलवाया कि भाई आप आ जाओ, तो वरना जामेतुर रशीद क्या करेगा, इनका निकाह खत्म कर देगा। उलमा की जमात को भी मजबूरी में इसकी इजाजत है कि कोर्ट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो कोई रिलायबल इदारा हो, रिलायबल मुफ्तियाने किराम हो। तो हजरत मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ने सो बड़ी तहरीक चलाई थी, और उस बेस पे जो है ना वो इमाम मालिक का ये मजहब लिया गया था कि किसी भी तरह से वो काबू में नहीं आ रहा। तो कोर्ट ने तो खुला पकड़ा दिया था उस खातून को, लेकिन वो तो ऐसी उसमें तो कोई ना ये तहकीक की कि नान नफका दे रहा है नहीं दे रहा, वो खातून गई टक करके, कोर्ट ने डिग्री पकड़ा दी। तो वो चूंकि दीनदार खातून थी, उनको अल्लाह का डर लगा, उन्होंने कहा ये तो, हमने कहा ये खुला नहीं हुआ है, इसमें तो ना कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। तो शोहर आया, वो कह रहा है मैं दे रहा हूं नान नफका, भाई मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि मैं नान नफका दे रहा हूं। कोर्ट ने कहा रहना है, खातून ने कहा नहीं रहना, कोर्ट ने कहा ये लो। तो जब किसी जज की बीवी को, उससे बड़ा जज जब इस तरह तलाक देगा ना, तो फिर उस जज को होश आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। यानी इसका फायदा ये हुआ, जज की किसी खातून से सेटिंग हो गई ना, ठीक है ना, तो जज उस खातून को बुला सकता है कि कोर्ट में आना, मैं खुला पकड़ाऊंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, सुभान अल्लाह। तो ये इस कानून का ये हासिल है। तो अब हमने क्या किया, मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किन सूरतों में निकाह खत्म हो सकता है। तो अगर जुल्म हो रहा है तो फिर तो हम भी कायल हैं भाई। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप नान नफका दे रहे हो नहीं दे रहे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया हमने, लेकिन मैंने कहा देखो आपका मसला है कि अगर ये नान नफका आपको देता है ना, तो फिर शरण आपके लिए खुला लेना जाए, यानी निकाह खत्म नहीं होगा आपका। तो मैंने कहा आइंदा से आप क्या गारंटी देते हो? फिर मैंने खुद उसको बताया कि आपने इनके अकाउंट में पैसे डालने, राशन की सूरत में नान नफका नहीं आएगा, इतने पैसे मंथली आपने इनके अकाउंट में डालने हैं, और आपने हमें उसकी रसीद दिखानी है। समझ में आ रही है बात? और आप इतने डेढ़ दो साल के ना चेक काट के मेरे पास रख दो, आप गारंटी दे दो। उसने कहा ये लो, ठक, सही है ना। मैंने खातून से कहा ये तो दे रहा है। उसने कहा और भी कोई गारंटी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब खातून चुप। ये किसकी अलामत है? केस किसने गलत फाइल किया था? खातून। और वो बच्चा ना, वो बाप अपनी तीन बेटियों को देख के रो पड़ा वहां पे। उसने कहा पांच साल से इसने मुझे इन बच्चियों से मिलने नहीं दिया है, केस ही चल रहे हैं कोर्ट में, और वो बच्चियां बाप को दूर भगा रही हैं, नहीं गोद में नहीं आना हमने, ये हो रहा है मार्केट में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। मैं उस खातून से, हमने दो और भी हमारे साथ मुफ्तियाने किराम थे, और हमने कहा देखें ये हुकूक भी अदा कर रहा है। तो उस खातून ने, एक दिन इसने यूं मारा था, एक दिन तो बहुत कुछ वाकयात होते हैं, वो तो सबके पास वाकयात होते हैं। एक दिन मारा वारा नहीं था, एक दिन यूं किया था, एक दिन यूं किया था, वो पता नहीं क्या किया, वो हमें साफ लगा कि यार ये कोई कुछ मिली है। इतनी बात थी कि शौहर पहले बहुत मालदार था, थोड़े से माली हैसियत उसकी कम हो गई थी। कभी आदमी का रोजगार अच्छा होता है, कभी कम होता है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो बुनियादी खर्चे नहीं उठा सकता। उसने कहा भाई मैं यानी इतना कर सकता हूं कि एक फ्लैट का किराया आता है ना, वो किराया इसके नाम का एग्रीमेंट बना लेता हूं, ठीक है ना, किराया लेगी डायरेक्ट, ये इतना कुछ कर दिया। तो अदालत ये कुछ नहीं करती, तो इसलिए अगर कोई वाकई जुल्म हो रहा है तो खातून कोर्ट में केस करेंगी, भाई मुझे बुनियादी नान नफका नहीं मिल रहा। तो कोर्ट पहले शोहर को बुलाएगी, उसको कहेगी कि आप अब गारंटी दो। और ये मसला आज का नहीं है, फुकहा ने सदियों पहले किताबों में लिख दिया है कि भाई आप पर एतमाद नहीं है, पता नहीं दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे, हम घर जाने के बाद थोड़ी पता चलेगा कौन अंडे आलू ला रहा है कौन नहीं ला रहा। तो आपने बेगम के अकाउंट में इतने पैसे डालने हैं और ये पैसे यहां कोर्ट में जमा करने हैं ताकि श्योरिटी हो कि ये पैसे इसके पास जा रहे हैं। कोर्ट ये करती है, यानी करनी का मतलब जब माली लेन देन होता है तो करती है, यहां आके कोर्ट ढीली पड़ जाती है क्योंकि कोर्ट का काम है तलाकें दिलवाना, समझते हो बात को। आजकल कोर्ट का काम क्या है, ये जनरल मुशर्रफ का कारनामा है कि फैमिली सिस्टम को तबाह करके दुनिया से जाओ। दूसरा जुल्म क्या होता है, बेतहाशा मारपीट। अब यहां आके ना फौरन लोग चीखते हैं बेतहाशा क्यों, क्या थोड़ा बहुत मारपीट जायज है? हम नहीं कह रहे कि जायज है, लेकिन जो सजाएं मिलती है ना वो चंद वो छोटे मोटे जुल्मों पे नहीं मिलती हैं, समझ रहे हो कि सजाएं से नहीं, खुला जो होगा ना डिवोर्स का हक जो औरत को दिया जाएगा वो छोटे मोटे जुल्म पे नहीं होता। जुल्म तो जुल्म है, मिसाल के तौर पर शौहर ने गाली दे दी तो जुल्म तो ये भी है, लेकिन क्या इस पे ये औरत को हक है कि जाके आपने कह दिया, एक दिन जोश में आया आप चीखने लगे बेगम पे, आओ तो ये कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप जुल्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे? लेकिन क्या इस जुल्म पे ये इजाजत होगी कि औरत जाए, मेरे शौहर ने उस दिन मुझे चीख के बात की है, जुल्म किया है। कुरान कहता है जब बात करो आवाज आराम से बात करो, नबी ने हुक्म दिया बेगम से जब बात करो अच्छे अखलाक से बात करो, इसने इस्लाम के हुक्म की धज्जियां उड़ाई है। कुरान कह रहा है सबसे बुरी आवाज गधे की होती है, और उस दिन जब मेरा शोहर 12:05 पे चीखा था मैंने उसकी आवाज भी रिकॉर्ड की है, मेरे पास दो गवाह भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ये बिल्कुल उसी स्टाइल में चीखा था जिस स्टाइल से हमारे मोहल्ले का गधा चीखता है। जुल्म किया खुलाफाई, जुल्म तो है भाई। मैं जब ये बात कहता हूं ना बेतहाशा मारता पीटता हो तो लोग कहते हैं अच्छा थोड़ा बहुत मारपीट जायज है, जायज वो भी नहीं है, लेकिन उस बेस पे खुला नहीं बनता, उस पे तो शौहर को समझाया जाएगा, सजा भी दी जा सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, तो तू क्यों उसको बिलावजह तूने मारा है, सजा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज पे इस्लाम निकाह नहीं तोड़ता जो जिसका इम्कान होता है। और कुरान ने तो वैसे भी वज़रिबू हुन्ना, जो औरत बहुत ज्यादा शरारत तक पहुंची हुई हो उस पर हाथ उठाने की भी अल्लाह ने इजाजत दी है। तो मर्द अगर ये साबित कर देता है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है लेकिन इसने मेरी अम्मा को गाली दी है तो कोर्ट तो फिर भी उसको खुला का देती है, सही है ना। तो मारना बीवी को जायज नहीं है, बुरा अमल है, लेकिन किस मार पे, कोई उसकी रीजन बताए औरत कि बिलावजह मारा है या बेतहाशा मारा है, और मुझे दोबारा खतरा है इस आदमी से कि ये पागल है मारता रहता है ये इस तरह से, कोई भरोसा नहीं है कि हाथ पांव ना तोड़ दे मेरे। तो अगर जरबे शदीद है इस नौयत की और अदालत कोर्ट में औरत कोर्ट में साबित भी करे, अब खवती कहती हम क्या साबित कहां से करें, तो भाई दुनिया में कोई जुर्म भी दलील के बगैर साबित नहीं होता। ऐसे तो मैं बोलूं इसने 1 करोड़ रुपए खाए मेरे, अब जज मुझसे कहे साबित करो खाए हैं, मैं कौन से साबित करूं, तो क्या मतलब फिर जो मर्जी इल्जाम जिस पे लाके डाल दो। तो असल तो फैसला आखिरत में होगा ना, तभी कितने लोगों ने कितनों के पैसे खाए हुए हैं लेकिन चूंकि उनके पास कोई दलील नहीं है तो सबर करके बैठे हुए हैं, कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं देती, तो यहां भी फिर सबर ही है और कुछ नहीं है। तो अब यहां पर इस तरह की मारपीट हो, तीसरी चीज क्या है, पागल हो गया, दीवाना हो गया, दिमागी तवाजुन इतना खराब हो गया। बाज लोग ऐसे दिमागी तवाजुन खराब होता है कि बीवी को डर होता है जान से ना मार दें, ये होता है। तो ऐसा खतरा हो गया, मजनून हो गया, दिमाग की खोपड़ी आउट हो गई है, वो पागलखाने में दाखिल करने की चीज है, वो मार रहा है पीट रहा है, बाज लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसी सूरत में भी औरत क्या केस फाइल कर सकती है, भाई डॉक्टर साहब ये इसकी आप खुद ही जज साहब इसकी सेटिंग आप खुद ही चेक कर लें, इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा, ऐसी सूरत में भी औरत ले सकती है। एक और सूरत है नामर्द हो, शादी से पहले पता नहीं था, अगर शादी से पहले मर्द ने बता दिया मैं भाई नामर्द हूं फिर नहीं, फिर तो अपनी अपनी सोच समझ के शादी की है, धोखे से की है, बाद में पता चला ये हम बिस्तरी के काबिल भी नहीं है और इलाज के काबिल भी नहीं है। बाद दफा ये होता है اب کیا کہتے ہیں جو بعض خواتین فوراً کیس کرتی ہیں نامرد ہے، حالانکہ وہ نامرد نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ یہ جو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، پہلے تو حکیم لوگ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے، تو وہ ڈر جاتا ہے پہلی رات میں، پتہ نہیں کیا کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے میں نے، صحیح ہے نا، تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات بری لگ گئی سسرال کی، تو اس کا تو نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر وہ علاج کے قابل ہے تو کورٹ فوراً نکاح ختم نہیں کرے گی، کورٹ ایک سال اس کو علاج کے لیے دے گی، بولے گی آپ کے پاس ایک سال کا چانس ہے، آپ علاج کریں اپنا. یہاں کورٹ ٹائم بولو نہیں دیتی، ایک سال کا. ایک سال علماء نے اس لیے بیان کیا کہ ایک سال میں چاروں موسم آتے ہیں، بعض لوگوں پر کسی موسم میں دوا اثر کرتی ہے، بعض پر کسی موسم میں، بعض موسمی تبدیلیوں سے بھی انسان کے مینٹل پہ بڑا فرق. تو صدیوں پہلے یہ فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں، بھائی کم سے کم ایک سال کا اس کو علاج کا، اگر قابل علاج ہو. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، تو پھر فوراً نکاح ختم کر دیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بیس پہ عدالت میں عورت کیس. تو میں جب بھی کوئی خاتون مظلوم ہوتی ہے، میں اس کو کھلا کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے کیس فائل کرو. اب دوبارہ یہ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، خواتین کو پتا چل جائے کہ ایسے کیس فائل کرنا ہے، کہ کورٹ میں یہ کیس نہیں فائل کریں ہمیں بہرحال اس سے طلاق لینی ہے. نان نفقہ ہے تو کورٹ پابند کرے کہ یہ میرا نان نفقہ دے، نہیں دیتا تو میرا نکاح اس سے ختم کرایا جائے. کورٹ اس کو بلائے گی، اصل تو یہ کہ پولیس سے اٹھوا کے لائے. کورٹ تو پولیس بھی نہیں بھیجتی، بس ایک نوٹس وہ بھی کسی اور کی دیوار پہ لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ منشی جو ہے نا، اکثر تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن نوٹس اس کو مل رہا ہے پھر بھی عدالت میں نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے مگر نان نفقے کے لیے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں دوں گا. یہ تو ظلم ہے بھائی، آپ کو دینا پڑے گا. اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے آ کے میں دوں گا، جج صاحب نان نفقے کا مسئلہ ہے، آج مجھے عقل آ گئی ہے، میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، میں نان نفقہ دوں گا، جج کہے گا تمہارا کیا پتا، تم گھر جا کے پھر مکر جاؤ، پھر یہ دوبارہ کورٹ میں آئے گی، اس کا یہی کام ہے. جج صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ عدالت کہے گی آپ نے یہاں کورٹ میں جمع کرانا ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کا نان نفقہ اتنا بنتا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد سے اس کی آمدن سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ عورت کو اس کی ویلیو سے کم دی جائے، دونوں کو بیلنس رکھا جائے گا. اللہ نے سارے مسئلے پہلے حل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن میں. تو اب کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جج صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں، جج کہہ کے چلیں بھائی ماشاء اللہ آپ گھر جائیں، آپ خوشی خوشی گھر جائیں، نان نفقے کا مسئلہ تھا کیا ہو گیا، حل ہو گیا. اسی طرح مار پیٹ ہو رہی ہے بے تحاشا، عدالت کیس فائل کرے گی، بھائی یہ بلا وجہ بات بات پہ مجھے مارتا ہے اور جو ہے میں مر جاؤں گی کسی دن. تو عدالت اس کو بلائے گی، بولے گی انسان کا بچہ بن جا، معاہدہ کر کے آج کے بعد نہیں مارے گا، یہ تیری بیوی ہے. کورٹ کو شریعت اس سے انوالو کرتی ہے کہ کورٹ کی بات کو انسان ویلیو دیتا ہے، اس کے علاوہ کورٹ کا میاں بیوی کے رشتوں میں کوئی کردار نہیں ہے. تو بھائی انسان کا بچہ بن جا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جج اس کو تمیز سے سمجھائے گا. اگر وہ معاہدہ کر لیتا ہے، آثار سے لگتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو واپس جاؤ. پھر اگر کمپلین آ رہی ہے اور عورت ثابت کر دیتی ہے، اب خواتین کہاں سے ثابت کریں گے؟ بہت طریقے ہیں بھائی ثابت کرنے کے، محلے والوں کو چیخنے کی آوازیں نہیں آئیں گی کیا؟ نشانات نہیں پڑتے کیا؟ اچھا آج کل وکیل نشان ڈال دیتے ہیں یوں یوں. ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس میں وکیل نے نا عورت کو کہا بلیڈ سے کاٹو اپنے آپ کو، بلیڈ بلیڈ سے کاٹ کے گئی ہے، خون نکل رہا ہے. اس نے کہا یہ بے تحاشا مارتا ہے. ہم نے کہا یار اتنا تو کوئی بھی نہیں مارتا بھائی، بلیڈ سے کون کاٹے گا یار، بیٹھو عقل کی بات. پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ فیک ہے سارا. تو عجیب عجیب یہ وکیل جو کہا تھا نا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا. تو یہ جو وکیل میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو خود الٹی پٹی ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے. جب جنرل مشرف نے آ کے کہا کہ اب تو کوئی ضرورت یہ بلیڈ سے کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں جاؤ ٹھک کر کے خلا کی ڈگری عدالت پکڑا دے گی. تو یہ کل عدم خلا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دی ہے عدالتی خلا پر.